आगे सबक देखिए भाई। बाबुल उशरी वल खराज। قال أرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام والسواد أرض خراج وهو ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبة ويقال من العلس إلى عبادان। भाई गुज़श्ता सबक में हमने बाबुल मुस्तामिन शुरू किया था। मैंने आपको बतलाया था कि कोई हरबी दारुल इस्लाम के अंदर अमान लेकर आए उसको भी मुस्तामिन कहते हैं, और कोई मुसलमान अमान लेकर दारुल हर्ब में जाए तो उसे भी मुस्तामिन कहते हैं। तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि जब मुसलमान अमान लेकर तिजारत के लिए दारुल हर्ब जाए तो उसके लिए जायज नहीं है कि उन हर्बियों के मालों और जानों के साथ तआरुस करे और उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। वजह यह कि जब इसने उनसे अमान लिया है तो उन्हें जमानत दे दी है कि वो उनके मालों और जानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस जमानत देने के बाद अगर वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये अहद शिकनी है भाई, और अहद शिकनी और धोखा तो शरीयत के अंदर हराम है। लेकिन अगर कोई ताजिर अहद शिकनी करके वहां से कोई माल छीन कर ले आया तो ये इसका मालिक तो बन जाएगा, अलबत्ता दयानतन इसको हुक्म दिया जाएगा कि वो इस माल को सदका करे। और साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर कोई मुसलमान दारुल हर्ब चला जाए और वहां फिर किसी हर्बी के साथ देन वाला मुआमला करे, या मुसलमान और हर्बी के दरमियान गसब वाली सूरत पेश आ जाए कि दोनों में से कोई एक दूसरे का माल गसब कर ले, और फिर उसके बाद मुसलमान वापस दारुल इस्लाम आ गया और वो हर्बी भी अमान लेकर यहां आ गया, तो क्या काजी इन दोनों के दरमियान फैसला कर सकता है या नहीं? तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि नहीं, काजी इन दोनों के दरमियान फैसला नहीं कर सकता। वजह यह कि जिस वक्त ये देन का मुआमला हुआ था उस वक्त ये मुसलमान और हर्बी दारुल हर्ब में थे, और दारुल हर्ब में तो काजी को विलायत हासिल नहीं, और इस वक्त काजी को मुसलमान पर तो विलायत हासिल है लेकिन उस देन के मामले में हर्बी पर विलायत हासिल नहीं, क्योंकि वो देन माजी की बात है और मुस्तामिन जब दारुल इस्लाम में आया है तो इसने मुस्तकबिल में तो हमारे अहकाम के मानने का इल्तिजाम किया है लेकिन माजी के अंदर तो उसने इस्लाम के अहकाम के मानने का इल्तिजाम नहीं किया था, लिहाजा उसमें काजी कोई फैसला नहीं कर सकता। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया अगर यही सूरत दो हर्बियों में पेश आ गई कि उन्होंने दारुल हर्ब में आपस में देन वाला मामला किया या उनके दरमियान गसब की सूरत पेश आई और फिर ये दोनों अमान लेकर दारुल इस्लाम आए तो फिर भी काजी इन दोनों के दरमियान कोई फैसला नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये दोनों हर्बी मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आए हैं तो फिर देन के मसले के अंदर तो काजी फैसला कर सकता है क्योंकि इन दोनों ने इस्लामी अहकाम को मानने का इल्तिजाम किया है और ये देन दोनों के दरमियान बाहमी रजामंदी से हुआ था। लेकिन गसब के अंदर काजी फैसला नहीं कर सकता क्योंकि दारुल हर्ब में अगर कोई किसी का माल गसब करे तो उसका मालिक बन जाता है, तो लिहाजा गसब के मसले में काजी फैसला नहीं कर सकता। और फिर साहिब हिदाया ने यह मसला जिक्र फरमाया कि अगर दो मुसलमान दारुल हर्ब अमान लेकर जाएं और फिर वहां पर दोनों में से एक दूसरे को कत्ल कर दे तो फिर कातिल पर दियत भी आएगी, चाहे कत्ले अम्द हो चाहे कत्ले खता हो, और ये दियत कातिल ही के माल में से अदा की जाएगी, इसके अंदर आकिला उसके साथ शरीक नहीं होंगे, और नीज इस कातिल पर कत्ले खता के अंदर कफारा भी आएगा क्योंकि इंदल अहनाफ कत्ले अम्द में कफारा नहीं आता, अलबत्ता कत्ले खता के अंदर कफारा आता है भाई, तो कफारा भी आएगा वहां पर। और वजह इसकी यह है कि दोनों मुसलमानों की जानें दारुल इस्लाम के अंदर महफूज और मासूम थीं, तो दारुल हर्ब अगर वो आरजी तौर पर कुछ वक्त के लिए गए हैं तो भी इसको ऐसे ही शुमार किया जाएगा जैसे वो दारुल इस्लाम ही में है क्योंकि उनका वापस आने का इरादा है, और दारुल इस्लाम के अंदर तो इनकी जान मासूम थी, उनको इस्मत मुअस्सिमा भी हासिल थी और इस्मत मुतकव्विमा भी हासिल थी, लिहाजा वहां दारुल हर्ब में भी उनको यह हासिल है, लिहाजा दियत भी आएगी और कफारा भी आएगा भाई। अलबत्ता दारुल हर्ब के अंदर किसास नहीं आ सकता, इसलिए क्योंकि किसास की वसूली के लिए कुव्वत चाहिए और कुव्वत तो इमाम और मुसलमानों की जमात के जरिए होगी और ये तो दारुल हर्ब में मौजूद नहीं भाई। और नीज ये भी बतलाया साहिब हिदाया ने कि ये दियत जो है कातिल ही के माल में से ली जाएगी। वजह यह कि कत्ले आमद में तो बात जाहिर है कि आकिला जो है वो कत्ले आमद के अंदर दियत अदा करने में शरीक नहीं होते, अलबत्ता कत्ले खता में वो दियत अदा करने के अंदर शरीक होते हैं, लेकिन उसकी वजह दरअसल ये होती है कि उनकी तरफ से भी कोताही पाई गई। उनका काम था कि अपने इस आदमी की हिफाजत करते कत्ल करने से, यानी उसको कत्ल करने से मना करते, लेकिन उन्होंने उसकी हिफाजत नहीं की, लिहाजा इनसे भी कोताही हुई है तो ये भी दियत अदा करने में शरीक होंगे। लेकिन यहां पर तो ये जो आदमी ने कत्ल किया है ये दारुल हर्ब के अंदर कत्ल किया है और वहां पर तो आकिला इसको रोकने पर कादिर नहीं, लिहाजा आकिला की तरफ से कोई कोताही नहीं पाई गई तो वो दियत अदा करने में शरीक नहीं होंगे। और उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर दारुल हर्ब में कोई मुसलमान कैदी है, उसको कोई दूसरा मुसलमान कैदी कत्ल कर देता है या कोई मुसलमान ताजिर कत्ल कर देता है तो इस सूरत के अंदर इमाम साहिब के नजदीक सिर्फ कफारा आएगा, दियत नहीं आएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, यह मुसलमान कैदी भी मुस्तामिन के दर्जे में है, इसको इस्मत मुअस्सिमा भी हासिल है और इस्मत मुतकव्विमा भी, तो लिहाजा इसके अंदर कफारा भी आएगा और दियत भी आएगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि यह जो कैदी है यह मगलूब हो गया है और यह पूरे तौर पर दारुल हर्ब वालों के कब्जे में आ गया है, यहां तक कि उनके सफर से यह भी मुसाफिर बन जाता है और उनकी इकामत से यह मुकीम बन जाता है। तो जब यह ताबे हो गया तो यह उनके हुक्म में हो गया और दारुल हर्ब वाले तो मासूम और महफूज नहीं है, लिहाजा यह भी मासूम और महफूज नहीं है। अलबत्ता इस्मत मुअस्सिमा इसको हासिल है इस्लाम की वजह से, तो कफारा आएगा इसके कत्ल से, अलबत्ता दियत नहीं आएगी भाई। और उसके बाद अगला मसला आपने पढ़ा था कि अगर कोई हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम आए तो उसको ज्यादा मुद्दत तक यहां नहीं रहने दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये वो यहां की जुबान सीख लेगा, यहां के तौर तरीके सीख लेगा तो जासूस बन जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन की मदद करेगा, तो लिहाजा इसको ज्यादा मुद्दत यहां ठहरने नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता थोड़ी मुद्दत रहने की इसको इजाजत होगी, क्योंकि अगर हम उससे भी मना कर दें फिर तो तिजारत वगैरह का रास्ता ही बंद हो जाएगा। और आपने पढ़ा कि अगर कोई जिम्मी जो है अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया और इमाम ने एक मुद्दत जिक्र कर दी कि अगर इस मुद्दत से ज्यादा तुम यहां रहे तो तुम जिम्मी बन जाओगे, तो अगर उस मुद्दत से वो ज्यादा रहा तो इस सूरत में वो जिम्मी बन जाएगा। या इसी तरह अगर उसने कोई जमीन खरीदी और उस जमीन पर खराज मुकरर कर दिया गया तो इस सूरत के अंदर भी ये जिम्मी बन जाएगा। और नीज इसी तरह अगर हर्बिया दारुल इस्लाम आई और उसने किसी जिम्मी या मुसलमान से निकाह कर लिया तो यह हर्बिया भी जिम्मिया बन जाएगी। लेकिन अगर इसके मुकाबले में कोई हर्बी दारुल इस्लाम आया और उसने किसी जिम्मिया से निकाह कर लिया तो ये हर्बी जो है ये जिम्मी नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो तलाक देकर वापस दारुल हर्ब जा सकता है भाई, तो इसने निकाह की वजह से यहां इकामत को अपने ऊपर लाजिम नहीं किया भाई। और फिर उसके बाद आपने मसला पढ़ा कि अगर कोई हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम के अंदर आया और उसने किसी मुसलमान या जिम्मी के साथ दैन वाला मामला किया, यानी मुसलमान और जिम्मी के जिम्मे इसका दैन आ गया या इसने उनके पास कोई अपनी अमानत रखवाई और फिर ये वापस चला गया दारुल हर्ब और फिर इसको अपना दैन या अमानत जो है वो याद आई और ये वापस दारुल इस्लाम आया, तो इस मर्तबा याद रखो इसको अमान हासिल नहीं है, लिहाजा इसका खून जो है मुबाह है। अलबत्ता अगर ये दूसरी मर्तबा भी अमान लेकर आया है तो फिर इसको उसी तरह अमान हासिल होगा। और बाकी जो इसका माल है यानी दारुल इस्लाम के अंदर वो जो दैन है या अमानत है, साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि वो खतरे में है। खतरे में होने का माना यह है कि अगर इसको कैदी बना लिया गया या इसके दार पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और इसको कत्ल कर दिया तो इस सूरत के अंदर जो इसने अमानतें रखवाई थी वो जो है माले फै बन जाएंगी यानी गनीमत बन जाएंगी, क्योंकि अमानतों पर तकदीरन मालिक ही का कब्जा होता है। तो जब ये खुद गनीमत बन गया तो इसका माल भी गनीमत बन गया, जबकि इसके मुकाबले में इसका दैन जो है वो अगर इसको कत्ल कर दिया गया या कैदी बना लिया गया तो इसका दैन साकित हो जाएगा। वजह यह कि दैन तो कोई मुअय्यन माल नहीं है, दैन तो एक शख्स के जिम्मे में होता है और मुतालबे के जरिए साबित होता है, तो लिहाजा यहां पर मुतालबा ही साकित हो गया क्योंकि यह आदमी कैद कर लिया गया, मुसलमानों ने इसको कैद कर लिया है या इसको कत्ल कर दिया है, तो मुतालबा साकित हुआ और जब मुतालबा साकित हुआ तो वह दैन भी साकित हो गया। या यूं कहें कि इस दैन पर उस दैन वाले का कब्जा मुकद्दम है मुसलमानों के लश्कर के कब्जे से, तो लिहाजा जब कब्जा मुकद्दम है तो वही इसका मालिक बन जाएगा। और इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि जिसके पास इसकी अमानत थी तो वो अमानत वाले का कब्जा भी तो मुकद्दम था, अमानत वाले को तो आपने अमानत का मालिक करार नहीं दिया लेकिन दैन वाले को आपने दैन का मालिक करार दे दिया। तो मैंने बतलाया था कि दोनों में फर्क है। वजह यह है कि अमानत वाले मसले के अंदर वो मुदा का कब्जा भी मालिक के कब्जे की तरह है, जबकि ये दैन वाले का कब्जा मालिक के कब्जे की तरह नहीं है भाई। और अगर मुसलमानों ने उनके दार पर कब्जा नहीं किया और हरबी को वैसे किसी ने कत्ल कर दिया या वो तबई मौत मर गया, तो इस सूरत में उसकी अमानत या उसका दैन ये उसके वारिसों का हक है, ये उनको दिया जाएगा भाई। उसके बाद आपने माल फै के बारे में पढ़ा कि माल फै वो माल जो लड़ाई के बगैर ही सिर्फ कुव्वत और रोब के जरिए मुसलमानों ने हासिल कर लिया। मसलन मुसलमान किसी जगह जिहाद के लिए गए लेकिन उन लोगों ने मुसलमानों के खौफ और रोब की वजह से वैसे ही शिकस्त तस्लीम कर ली, लड़ाई की जरूरत ही पेश ना आई, तो अब ये जो माल हासिल होगा ये माल फै है भाई। और माल फै के अंदर याद रखो खुमुस नहीं निकाला जाता और ये गाजियों का हक भी नहीं है, ये मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा जिस तरह खराज जो है मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाता है भाई। और उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई हरबी मुसलमान होता है तो वहां तीन सूरतें बनती हैं, या तो हरबी अमान लेकर दारुल इस्लाम आता है और यहां मुसलमान हो जाता है, दूसरी सूरत यह है कि वह दारुल हर्ब में ही मुसलमान होता है लेकिन हिजरत करके दारुल इस्लाम आ जाता है, इसको अपना वतन बना लेता है, और तीसरी सूरत यह है कि हरबी मुसलमान तो हुआ लेकिन वहीं पर वह दारुल हर्ब में है। तो इस सूरत में इसका कौन सा माल महफूज होगा और कौन सा माल महफूज नहीं, तो साहिब हिदायत ने बतलाया कि हरबी अगर अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया है और यहां मुसलमान हुआ है तो दारुल हर्ब में उसका जितना माल है वो सारा माल फै है, इसलिए क्योंकि वो माल इसके कब्जे में नहीं है, हत्ता कि इसकी नाबालिग औलाद जो बाप के ताबे होकर मुसलमान शुमार होती है वो भी मुसलमान शुमार नहीं होगी क्योंकि वो अलग दार में है भाई और वो भी माल गनीमत के अंदर दाखिल होंगे भाई। लेकिन इसके बरक्स अगर हरबी दारुल हर्ब में ही मुसलमान हुआ और फिर उसके बाद दारुल इस्लाम आया है तो जब यह मुसलमान हुआ था यह दारुल हर्ब में था, लिहाजा वहां जो माल इसके कब्जे में है वो उस माल भी महफूज हुआ, और इसी तरह इसकी नाबालिग औलाद भी इसकी विलायत में थी लिहाजा वो भी इसके ताबे होकर मुसलमान शुमार होगी, या इसी तरह इसने किसी मुसलमान या जिमी के पास कोई अमानत रखवाई थी तो वो भी इसी के कब्जे में है क्योंकि मुदा का कब्जा भी मालिक के कब्जे की तरह होता है, तो वो भी माल महफूज है, अलबत्ता इसका बाकी माल जो है वह माल फै है, मसलन उसकी बीवी है, उसकी बालिग औलाद है, या इसी तरह इसका कोई माल जो है हरबी के पास है, चाहे बतौर अमानत के है चाहे बतौर गसब के है, क्योंकि हरबी का कब्जा मोहतरम और मुकर्रम नहीं है, लिहाजा वो सब माल फै में शुमार होगा भाई। और अगर वो मुसलमान हुआ और हिजरत नहीं की वहीं दारुल हर्ब में है तो इस सूरत में भी यही मसला है भाई, इसकी औलाद भी इसके ताबे होकर मुसलमान शुमार होगी और इसका जो माल है इसके कब्जे में वो भी इसी का शुमार होगा भाई। और उसके बाद आपने मसला पढ़ा था कि दारुल हर्ब में अगर कोई हरबी मुसलमान हो गया और फिर किसी मुसलमान ने इसे आमदन या खतान कत्ल कर दिया तो हमारे नजदीक वहां पर सिर्फ कफारा आएगा, वहां किसास भी नहीं और दियत भी नहीं। किसास तो इसलिए नहीं क्योंकि दारुल हर्ब में मुसलमानों को कुव्वत हासिल नहीं है, और दियत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसको इस्मत मुतकविमा हासिल नहीं। ये जो हर्बी दारुल हर्ब में मुसलमान हुआ है तो मुसलमान होने की वजह से इसको इस्मत मुअस्सिमा तो हासिल हो गई, अलबत्ता इस्मत मुतकविमा वो दारुल इस्लाम आने से हासिल होगी और उसकी वजह से किसास और दियत आती है। तो लिहाजा यहां किसास और दियत नहीं आएगा, सिर्फ कफारा आएगा क्योंकि कफारा जो है उसका सबब इस्मत मुअस्सिमा है भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस शख्स के कत्ल की वजह से किसास भी आएगा अगर इसको जानबूझकर कत्ल किया गया है, और दियत आएगी अगर इसको गलती से कत्ल किया गया है। वो फरमाते हैं वजह यह है कि इस शख्स को इज्मत हासिल हो गई इस्लाम की वजह से, इसलिए क्योंकि इस्लाम इज्जत का बाइस है और इज्मत का हासिल होना यह भी इज्जत वाली चीजों में से है, तो इस्लाम की वजह से इसको इज्मत हासिल हो गई भाई। और नीज वो फरमाते हैं कि इज्मत के अंदर असल जो है वह इज्मत मुअस्सिमा है, इसलिए क्योंकि इसी की वजह से जजर हासिल हो जाता है। जो भी सलीमुल फितरत इंसान हो जब उसे पता हो कि इस कत्ल की वजह से मुझे आखिरत में मेरा मुआखजा होगा तो वो कत्ल से रुकेगा भाई। तो मालूम हुआ इस्मत के अंदर असल इस्मत मुअस्सिमा है क्योंकि इसी के जरिए डांट हासिल हो गई। असल मकसद क्या था? डांट और जजर थी कि लोग इस जुर्म से रुक जाएं, तो फितरत सलीमा वाला शख्स तो इसी की वजह से रुक जाएगा। अलबत्ता इस्मत मुतकविमा की वजह से यह इस्मत मुअस्सिमा कामिल हो जाएगी क्योंकि इसके जरिए कामिल तौर पर रुकना पाया जाएगा कत्ल जैसे जुर्म से। वजह यह कि फितरत सलीमा वाला वो तो इस्मत मुअस्सिमा की वजह से ही रुक जाता है, लेकिन बास का माकल लोग जो हैं जब तक दुनियावी सजा ना हो वो जुर्म से बाज नहीं आते। तो लिहाजा जब दुनियावी सजा भी आ जाएगी यानी इस्मत मुतकविमा तो अब लोग कामिल तौर पर इस जुर्म से, इस कत्ल वाले जुर्म से रुक जाएंगे। तो मालूम हुआ कि इस्मत मुअस्सिमा असल है, उसी की वजह से इंसान इस जुर्म से रुक जाता है। अलबत्ता इस्मत मुतकविमा के जरिए यही रुकना कामिल तौर पर पाया जाएगा। मालूम हुआ इस्मत मुअस्सिमा जो है वो कामिल हो जाती है इस्मत मुतकविमा के जरिए। तो इस्मत मुतकविमा वसफ के दर्जे में हो गई इस्मत मुअस्सिमा के लिए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक इस्मत मुअस्सिमा असल और इस्मत मुतकविमा उसके लिए वसफ के दर्जे में, और असल यानी इस्मत मुअस्सिमा जब इस्लाम की वजह से हासिल हो रही है तो जो वसफ है यानी इस्मत मुतकविमा वो भी इस्लाम की वजह से ही हासिल हो जाएगी। तो इस शख्स को दोनों इस्मतें हासिल थी, तो इस्मत मुतकविमा की वजह से किसास आएगा कत्ले अम्द में और दियत आएगी कत्ले खता के अंदर, और इस्मत मुअस्सिमा की वजह से कफारा आएगा। जबकि हम कहते हैं कि यह शख्स जो दारुल हर्ब में मुसलमान हुआ है इसे इस्मत मुअस्सिमा तो हासिल हो गई लेकिन इस्मत मुतकविमा अभी भी हासिल नहीं हुई भाई। वजह यह कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फइन कान मिन कौमिन अदुविल लकुम, अगर वो मकतूल इन लोगों में से हुआ जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वह हुआ मुमिन इस हाल में कि वह मकतूल मोमिन है मुसलमान है, फतहरीरु रकबति मुमिना, तो फिर एक मोमिन गर्दन का आजाद करना है यानी एक मोमिन गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा। तो साहिब हिदाया ने इसको दलील बनाया दो तरह से कि या तो ये जो फा है ये फा जजा वाली है और मालूम हुआ ये ही जजा है और चीज नहीं। इसी आयत के शुरू में अल्लाह फरमाते हैं वमन कतल मुमिनन खतअन फतहरीरु रकबतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, वहां जिक्र है कि अगर किसी ने मोमिन को गलती से कत्ल कर दिया तो वहां कफारा भी आएगा और दियत भी आएगी। लेकिन यहां पर फइन कान मिन कौमिन अदुविल लकुम वह हुआ मुमिनुन फतहरीरु रकबतिन मुमिना, यहां सिर्फ कफारे का जिक्र है, यहां दियत का जिक्र नहीं। तो साहिबे हिदाया फरमाते हैं कि हमारी दलील या तो ये फा है, फा आती है जजा पर और मालूम हो यही सारी जजा है, यही करना काफी है यानी ये कफारा देना ही काफी है, क्योंकि मैंने बतलाया कि फा आती है जजा के लिए। तो गोया तकदीर कलाम यूं है, फजा उहू तहरीर रकबती मुमीना, और जजा जजा यजी जजा अन का माना होता है काफी होना, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि तहरीर रकबा ही इसके लिए काफी है भाई। या इस आयत को हम दलील बनाते हैं इस तौर पर कि यहां पर जो जजा अल्लाह ने जिक्र फरमाई वो सिर्फ तहरीर रकबा ही को जिक्र फरमाया है और कोई चीज जिक्र नहीं की, हालांकि ये बयान का मकाम था। अगर कोई और चीज भी जजा के तौर पर आ रही है तो अल्लाह उसको भी जिक्र फरमाते। जब अल्लाह ने और किसी चीज को जिक्र नहीं फरमाया, सिर्फ इसी चीज को जिक्र फरमाया है, तो मालूम हो सिर्फ यही जजा है, यही जजा है, यानी सिर्फ कफारा आएगा, यहां दियत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। और नीज हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह को जवाब देते हैं कि आपके नजदीक तो इस्मत मुअस्सिमा असल है और इस्मत मुतकविमा उसका वसफ है, लेकिन हमारे नजदीक दोनों इस्मतें असल हैं। इस्मत मुअस्सिमा असल है आदमी होने की वजह से, तो उसमें आदमी होना असल है और माल उसके ताबेअ है, और इस्मत मुतकविमा जो है मुतकविम के लफ्ज से ही पता चल रहा है कीमत वाला होना, और कीमत वाला तो माल होता है, तो इस्मत मुतकविमा के अंदर माल असल है और नफ्स उसके ताबेअ है भाई। तो इस्मत मुअस्सिमा के अंदर आदमी होना असल है और माल उसके ताबेअ है। वजह यह कि इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, उसके लिए शरीय अहकाम नाजिल फरमाए हैं, और इंसान शरीय अहकाम पर तभी अमल कर सकता है जब वो बाकी रहे, जब वो जिंदा रहे, और जिंदा वो तभी रह सकता है जब उसके साथ तआरुज करना और उसे कत्ल करना हराम हो। अगर उसके साथ तआरुज हराम नहीं, फिर तो वो जिंदा नहीं रहेगा, तो वो शरीय अहकाम पर अमल कैसे करेगा। तो लिहाजा मालूम हुआ इस्मत मुअस्सिमा जो है आदमी होने की वजह से इंसान को हासिल होती है, क्योंकि वो मुकल्लफ है, और जबकि माल की इस्मत वो आदमी होने के ताबेअ है कि इसके माल को भी इस्मत हासिल हो जाती है, वो इस माल का मालिक बन जाता है, वो मासूम और महफूज बन जाता है। वजह यह कि मुकल्लफ मोहताज है कि इन चीजों से फायदा उठाए। हालांकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं खलका लकुम मा फिल अर्जी जमीआ, कि जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया है, और यह आयत तकाजा कर रही है कि जमीन की हर चीज से फायदा उठाना मुबाह है। इसका मतलब है कि कोई शख्स शिकार पकड़ कर ले आए फिर भी मुबाह ही रहेगा, कोई शख्स जंगल से लकड़ियां ले आए वो फिर भी माल मुबाह ही रहेगा, लेकिन इंसान तो मोहताज है इन चीजों से नफा उठाने के लिए कि उसे इन चीजों का मालिक करार दिया जाए, क्योंकि अगर मालिक करार नहीं देंगे तो ये चीजें तो दूसरे ले जाएंगे, इससे ये उनसे फायदा नहीं उठा सकेगा। तो लिहाजा उसके माल को भी इस्मत हासिल हो गई उस आदमी होने की वजह से। तो इस्मत मुअस्सिमा में आदमी होना असल है और माल उसके ताबेअ, जबकि इस्मत मुतकविमा के अंदर माल असल है, इसलिए क्योंकि कीमत वाला होना बतलाता है कि अगर इसको नुकसान पहुंचाया तो तलाफी करना पड़ेगी, और तलाफी तो माल के अंदर हो सकती है, जानों के अंदर नहीं, क्योंकि माल एक दूसरे के मिसल होते हैं, जाने एक दूसरे के मिसल नहीं होती, और माल तो महफूज होता है दारुल इस्लाम के अंदर लाने से। जब माल दारुल इस्लाम लाया जाएगा फिर ही वो माल महफूज बनेगा। तो जब माल जो इस्मत मुतकविमा में असल है वो जब दारुल इस्लाम में आने से मासूम हो रहा है, तो नफ्स जो है, जान जो है, वो भी दारुल इस्लाम में लाने से ही वो महफूज होगी, उसको इस्मत हासिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इस पर फिर इश्काल होता है कि अगर दार की वजह से इस्मत मुतकविमा हासिल होती है, फिर तो हर्बियों को भी अपने दार में कुव्वत हासिल है, तो वहां उनको इस्मत मुतकविमा हासिल होनी चाहिए। कहते हैं हां आपकी बात ठीक है, हर्बियों को दारुल हर में कुव्वत हासिल है, और यह तकाजा यही करता है कि इनको वहां इस्मत हासिल होनी चाहिए, लेकिन शरीयत ने इनकी कुव्वत का एतबार नहीं किया। शरीयत ने इनकी कुव्वत को तोड़ने और खत्म करने का हुक्म दिया है, शरीयत ने इनसे जिहाद करने का हुक्म दिया है। मालूम हुआ शरीयत के नजदीक कुफार की ताकत मोतबर नहीं। जब कुफार की ताकत मोतबर नहीं तो उनको दारुल हर्ब में इस्मत भी हासिल नहीं होगी। बात समझ में आ गई। और फिर इश्काल हुआ कि मुर्तद और मुस्तामिन जो है, मुर्तद जो दारुल इस्लाम में ही मुर्तद हो गया, या मुस्तामिन जो वो हरबी जो अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया है, ये तो दारुल इस्लाम में मौजूद हैं, तो इनको भी इस्मत मुतकविमा हासिल होनी चाहिए क्योंकि ये दारुल इस्लाम में है। और आपने हमें बताया कि दारुल इस्लाम के अंदर जान को इस्मत मुतकविमा हासिल हो जाती है, तो उसका जवाब भी दिया साहिब हिदाया ने कि भाई अगरचे ये दारुल इस्लाम में है लेकिन इनका इरादा जो है वो दारुल हर्ब जाने का है, तो गोया तकदीरन ये अभी भी वहीं पर हैं। जब तकदीरन ये अभी भी वहीं पर हैं तो लिहाजा इनको इस्मत मुतकविमा हासिल नहीं, लिहाजा इस मुर्तद को कोई कत्ल करे या मुस्तामिन को कोई कत्ल करे तो न उसकी वजह से दियत आएगी और न किसास आएगा। और फिर साहिब हिदाया ने आखिर में मसला जिक्र फरमाया कि अगर किसी मुसलमान का कोई वली ना हो तो फिर इमाम जो है यानी मुसलमानों का खलीफा और हाकिम जो है वो इस मुसलमान का वली है, तो अगर इस मुसलमान को किसी ने खतान कत्ल किया है तो कातिल से दियत वसूल करना ये इमाम का हक है, वो इस दियत को वसूल करेगा और बैतुल माल में जमा करवाएगा। और अगर इस मुसलमान को जिसका कोई वली नहीं है इसको किसी ने जानबूझकर कत्ल कर दिया तो फिर इस सूरत के अंदर इमाम को इख्तियार है कि वो चाहे किसास ले ले और चाहे तो दियत ले ले। इस पर इश्काल होता है कि कत्ल आमद के अंदर तो किसास आया करता है, यहां आप इमाम को इख्तियार किस तरह दे रहे हैं कि चाहे वो किसास ले ले और चाहे वो दियत ले ले। तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि मुराद यह है कि बतौर सुलह के दियत ले ले, यानी यहां असल तो किसास ही है लेकिन बतौर सुलह के इमाम दियत भी ले सकता है और यहां दियत लेने में मुसलमानों का फायदा है, लिहाजा इमाम दियत भी ले सकता है। अलबत्ता इमाम को यह इख्तियार नहीं है कि वो इस कातिल को माफ कर दे क्योंकि इमाम को जो शरीयत ने विलायत दी है वो शफकत की वजह से है, तो जहां शफकत होगी वहीं पर इमाम को विलायत हासिल होगी और जहां शफकत नहीं वहां इमाम को विलायत भी नहीं है, और यहां इस कातिल को माफ करने में कोई शफकत नहीं है, इसमें तो मुसलमानों का नुकसान है, लिहाजा इमाम को विलायत नहीं होगी कि वो इस कातिल को माफ करे। अब आइए आज के सबक पर। बाबुल उशरी वल खराज, ये बाब है उशर और खराज के बयान में। आप जानते हैं भाई कुछ जमीनें उशरी होती हैं और कुछ जमीनें खराजी होती हैं। उशर जो है पैदावार पर होता है, हर पैदावार में से दसवां हिस्सा देना पड़ेगा बतौर जकात के फुकारा को, इसको उशर कहते हैं। ये उस सूरत में है जब काश्त वगैरह के अंदर खर्चा वगैरह न करना पड़ता हो, और अगर किसान का खर्चा वगैरह होता है और मेहनत होती है तो फिर इस सूरत के अंदर शरीयत ने और भी नरमी कर दी, फिर उशर नहीं देना पड़ेगा बल्कि निस्फ उशर यानी बीसवां हिस्सा देना पड़ेगा। तो आम जमीन पर पैदावार के अंदर दसवां हिस्सा दिया जाएगा, और अगर किसान का उस पर खर्चा होता है ट्यूबवेल वगैरह से पानी लगाना पड़ता है तो फिर उशर भी वाजिब नहीं बल्कि निस्फ उशर यानी बीसवां हिस्सा वाजिब है। जबकि इसके मुकाबले में खराज है, कुछ जमीनें खराजी होती हैं, और याद रखो खराज जो है वो साल में एक ही मरतबा वसूल किया जाता है, खराज पूरे साल में एक ही मरतबा वसूल किया जाता है और इसका ताल्लुक पैदावार से नहीं है बल्कि सिर्फ पैदावार पर कुदरत से है। अगर किसान काश्त करने पर कादिर है तो फिर उसे खराज देना पड़ेगा, चाहे वो कुछ काश्त करे या काश्त न करे। अगर वो कुछ काश्त नहीं करता फिर भी उसको खराज देना पड़ेगा क्योंकि उसकी तरफ से कोताही पाई गई है। वो तो काश्त कर सकता था, जमीन से पैदावार हासिल कर सकता था, लेकिन उसने बिला वजह ही जमीन को बेकार छोड़ दिया तो उसको खराज देना पड़ेगा। जबकि उशर का ताल्लुक हकीकी पैदावार से है, पैदावार पर कुदरत नहीं बल्कि हकीकी कुदरत। खराज में तो पैदावार पर कुदरत काफी थी लेकिन उशर जो है वो हकीकी पैदावार पर आएगा, लिहाजा अगर कोई फसल काश्त की है तो उसमें से उशर भी दिया जाएगा, अगर कोई फसल ही नहीं काश्त की तो उशर भी नहीं आएगा। भाई बात समझ में आ गई। और एक और बात याद रखना, साहिब हिदाया भी आगे जिक्र फरमाएंगे कि उशर के अंदर इबादत का पहलू है और खराज के अंदर जो है वो सजा वाला पहलू है, लिहाजा मुसलमानों की जमीनों पर उशर आता है और कुफार की जमीनों पर खराज आता है। लेकिन एक बात है कि एक दफा जमीन खराजी हो गई, यानी मुसलमानों ने एक इलाके पर कब्जा कर लिया और वहां के कुफार से वो जमीनें नहीं छीनी बल्कि उन्हीं के पास वो जमीनें रहने दी, तो इन जमीनों पर खराज आ जाएगा और खराजी जमीन अब खराजी ही रहेगी, हत्ता कि अगर कोई मुसलमान भी इसको खरीद लेगा तो उसको खराज ही अदा करना पड़ेगा भाई जी। उसको खराज ही अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर एक उशरी जमीन थी उसको किसी काफिर ने खरीद लिया तो याद रखो वो जमीन भी खराजी बन जाएगी। तो मालूम हुआ उशरी जमीन तो खराजी बन जाती है लेकिन खराजी जमीन उशरी नहीं बनती भाई। तो कहते हैं बाबुल उशरी वल खराजी, ये बाब है उशर और खराज के बयान में। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं अर्जुल अरबी कुल्लुहा अर्जु उशरीन, के अरब की जमीन जो है वो सारी उशरी जमीन है। आगे बतलाएंगे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने अरब की जमीन पर खराज मुकर्रर नहीं फरमाया। जमीन पर दो चीजों में से एक चीज तो जरूर आती है, या खराज आता है या उशर आता है। तो जब खराज मुकर्रर नहीं फरमाया तो जाहिर सी बात है कि इन पर उशर आएगा। तो अरब की सारी जमीन उशरी है भाई। तो कहते हैं قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ارض العرب كلها ارض عشرين کے عرب کی ساری زمین جو ہے وہ عشری زمین ہے وہی ما بین العزیب الى اقصى حجر باليمن بمهرۃ الى حد الشام۔ اب اس کی حدود بیان فرما رہے ہیں یہ جو عرب کی زمین ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کی حدود کیا ہیں۔ کہتے ہیں وہی اور یہ جو عرب کی زمین ہے ما بین العزیب الى اقصى حجر बिल यमन, ये वो है जो उजैब उजैब से लेकर इला अक्सा हजरिम बिल यमन, अक्सा कहते हैं आखिरी किनारे को, इला अक्सा हजरिम बिल यमन, यमन के अंदर हजर मकाम के आखिरी किनारे तक है जी। ये अरब की जमीन, इसकी लंबाई बयान फरमा रहे हैं, इसकी लंबाई जिक्र की जा रही है कि लंबाई के अंदर ये उजैब मकाम से लेकर यमन के अंदर जो हजर मकाम है उसके आखिरी किनारे तक, यह है इस जमीन की लंबाई भाई। और चौड़ाई भी आगे बतलाएंगे कि इसकी चौड़ाई जो है वो शाम की सरहद तक है। कहां तक? शाम की सरहद तक है। यानी एक तरफ तो इसके समुंदर है भाई, यानी जद्दा जो है, जद्दा समुंदर के किनारे है, तो जद्दा के साहिल से लेकर शाम की सरहद तक ये इस जमीन की चौड़ाई है। ये सारी सरजमीन अरब है, इसके ऊपर उशर है, खराज नहीं है। तो कहते हैं वही अमा बैन अल उज़ैब इला अक्सा हजरिम बिल यमनी, और ये वो जमीन है जो उज़ैब से लेकर यमन के अंदर हजर के आखिरी किनारे तक है। बी महरता, महरा ये भी यमन के अंदर एक इलाका है भाई, जैसे मुल्क के अंदर एक सूबा होता है और फिर उसमें शहर होता है, तो इसी तरह ये बिमहरा ये बदल है यमन से, ये बदल है यमन से। तो तर्जमा क्या हुआ था? यमन के अंदर हजर के आखिरी किनारे तक, यानी महरा के अंदर हजर के आखिरी किनारे तक। मालूम हुआ ये हजर मकाम ये महरा इलाके के अंदर वाके है, और महरा इलाका जो है वो यमन के अंदर है। सूरत समझ में आ रही है? तो कहते हैं वही मा बैन अल उज़ैब इला अक्सा हजरिम बिल यमनी बी महरता। मैंने बतलाया ये बी महरा बदल है बिल यमन से भाई। तो अब तर्जमा तवज्जो से सुनिए। कहते हैं वही मा बैन अल उज़ैब इला अक्सा हजरिम बिल यमनी बी महरता, और ये अरब की सरजमीन जो है ये उज़ैब मकाम से लेकर यमन के अंदर यानी महरा के अंदर हजर के आखिरी किनारे तक है। ये यमन के अंदर यानी महरा के अंदर हजर के आखिरी किनारे तक है। इला हद शामी, शाम की हद तक, शाम की हुदूद तक है ये सरजमीन अरब भाई। तो यहां मतन के अंदर सिर्फ तीन हुदूद जिक्र हुई, लंबाई के अंदर जिक्र किया उज़ैब से लेकर अक्सा हजर तक, और चौड़ाई के अंदर सिर्फ हद शाम को जिक्र किया, चौड़ाई के अंदर सिर्फ हद शाम को जिक्र किया। यानी तीन जिहतें बयान की, चौथी जानिब बयान नहीं की, क्योंकि चौथी जानिब समुंदर है भाई। तो मैंने बतलाया कि जद्दा के साहिल से लेकर शाम की हद तक है ये सरजमीन अरब भाई। आगे देखिए, वह सवाद अर्जु खराजिन, और सवाद जो है वो खराजी जमीन है। सवाद से मुराद है सवाद इराक भाई। इसका जिक्र माकबल में गनीमतों के बयान में इसका जिक्र हो चुका है कि यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में यह सवाद इराक का इलाका फतह किया गया, और यह बहुत बड़ा इलाका है और बे इंतहा सरसब्ज़ो शादाब है, बड़ी आला जमीनें हैं यहां की, बहुत बेहतरीन पैदावार होती है। और इसको सवाद इसलिए कहते हैं कि आप जानते हैं कि जब जमीन पर सब्जा वगैरह ज्यादा हो तो दूर से देखें तो कुछ स्याही मालूम होती है, तो इसलिए इसको सवाद इराक कहते हैं, इराक की स्याही भाई। तो ये जो सवाद इराक है, इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने खराज मुकर्रर फरमाया था सहाबा के मशवरे से, तो उसी को जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह सवाद अर्ज खराजिन, और सवाद जो है वह खराजी जमीन है। वह हुआ मा बैनल उज़ैबी इला अकबाती हुलवानिन। अब इसकी हुदूद बयान कर रहे हैं भाई, हुदूद भाई, उज़ैब तक सरजमीन अरब है और उज़ैब से आगे फिर सवाद इराक शुरू होता है। तो कहते हैं वह हुआ मा बैनल उज़ैबी इला अकबती हुलवाना, हुलवान या हुलवान भाई ये जगह का नाम है। और अकबा याद रखो, अकबा कहते हैं दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते को जी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते को अकबा कहते हैं, यानी घाटी जो है घाटी। तो इला अकबती हुलवाना, हुलवान की घाटी तक जी। उज़ैब से लेकर यह अर्ज़े सवाद कहां तक है, उज़ैब से लेकर हुलवान की घाटी तक। मालूम हुआ हुलवान के पास कुछ पहाड़ियां वगैरह होंगी, तो उन तक ये इसकी हुदूद हैं भाई। तो कहते हैं वह हुआ मा बैनल उज़ैबी इला अकबती हुलवाना, और ये सवाद इराक जो है वह उज़ैब से लेकर हुलवान की घाटी तक है। वह मीना सालबती, वह मीना सालबती भाई, मेरी किताब में असालबा है लेकिन हिदाया के दीगर नुस्खों में और दीगर किताबों में यह सालबिया है, सालबा नहीं है बल्कि सालबिया है, या मुशद्दद भी आखिर में है भाई। कहते हैं वमीना सालबियती व युकाल मीनल अलसी इला अब्बादाना। अब लंबाई बयान कर रहे हैं कि यह सवाद इराक जो है लंबाई के अंदर सालबिया से लेकर अब्बादान तक है, सालबिया से लेकर अब्बादान तक है। और यह भी कहा जाता है कि अल्स से लेकर अब्बादान तक है, सालबिया से लेकर अब्बादान तक है या अल्स से लेकर अब्बादान तक, यह है सवाद इराक की लंबाई। कहते हैं वह मीना सालबियती, और सालबिया से लेकर, वह युकाल मीनल अल्सी, और कहा जाता है अल्स से लेकर इला अब्बादान, अब्बादान तक, यह इस सवाद इराक की लंबाई है। لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا الْخَرَاجَ مِنْ أَرَاضِ الْعَرَبِ। भाई यहां से दलील जिक्र कर रहे हैं, मतन में जिक्र किया कि अरब की सारी जमीन उशरी है और सवाद इराक की सारी जमीन खराजी है, तो अब दलील जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं लिअन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम वल खुलफा अर राशिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हुम, इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन जो हैं उन्होंने लम याखुजुल खराज मिन अराजिल अरबी, उन्होंने अरब की जमीनों से खराज नहीं लिया, उनसे खराज नहीं लिया। जब खराज नहीं लिया मालूम हो वो उशरी जमीनें हैं। वली अन्नहू बि मंजिलतिल फैई, और इसलिए क्योंकि ये जो है फै के दर्जे में है, माले फै भाई जो बगैर लड़ाई के हासिल होता है। कहते हैं वली अन्नहू बि मंजिलतिल फैई, और इसलिए क्योंकि ये माले फै के दर्जे में है। फला यस्बुतु फी अराजीहिम कमा ला यस्बुतु फी रिकाबिहिम, लिहाजा इनकी जमीनों में खराज साबित नहीं होगा जैसे कि इनकी गर्दनों में खराज साबित नहीं हो सकता। भाई आप पढ़ चुके हैं कि अगर मुसलमान किसी इलाके पर कब्जा कर लें और जमीनों को गाजियों में तकसीम करने के बजाय उन्हीं कुफार के पास रहने दें तो इस जमीन पर खराज आएगा, सालाना टैक्स आएगा जिसे क्या कहते हैं खराज, और वो काफिर भी चूंकि ममलिकत इस्लामिया के अंदर आ गए लिहाजा उन पर जिजिया आएगा, और जिजिये को खराजुर रास कहते हैं। क्या कहते हैं? خراج الرأس کہتے ہیں، یہ بات پہلے بھی گزری تھی کہ مشرکین عرب جو ہیں ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر بھیجے گئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ فیصلہ صرف اسلام یا تلوار کے ذریعے ہوگا، یا تو وہ اسلام لے آئیں تو ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، یا تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو مشرکین عرب جو ہیں ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جا سکتا، یعنی خراج الرأس ان سے قبول نہیں کیا جا سکتا. جب مشرکین عرب سے خراج الرأس قبول نہیں کیا جا سکتا تو ان کی زمینوں پر خراج الارض بھی نہیں آئے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ خراج الارض کن پر آتا ہے؟ جن پر خراج الرأس بھی آتا ہے. توجہ ہے. کہتے ہیں ولی انہو بمنزلت الفیع، اور اس لیے کیونکہ یہ عرب جو ہے یہ مال فیع کے درجے میں ہے، فلا یثبت فی اراضیہم، لہذا عربوں کی زمینوں میں خراج ثابت نہیں ہوگا، کما لا یثبت فی رقابہم، جیسے کہ خراج ان کی گردنوں میں ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی ان پر جزیہ نہیں آ سکتا. وہذا لان وضع الخراج من شرطہ ان یقر اہلھا علی الکفر، وہی وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وجہ یہ کہ خراج کو مقرر کرنے کے لیے شرط ہے کہ اس زمین کے مالکوں کو کفر پر ہی برقرار رہنے دیا جائے، ان کو کفر پر رہنے کی اجازت ہو. جب زمین والے کفر پر رہیں گے تو ان کے اوپر جزیہ آئے گا اور ان کی زمینوں پر خراج آئے گا، لیکن مشرکین عرب سے تو صرف یا اسلام قبول کیا جائے گا یا تلوار سے ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو جب مشرکین عرب پر جزیہ نہیں آ سکتا تو ان کی زمینوں پر خراج بھی نہیں آ سکتا. کہتے ہیں وہذا، اور یہ اس وجہ سے، لان وضع الخراج من شرطہ، اس لیے کیونکہ خراج مقرر کرنے کی شرط میں سے ہے کہ ان یقر اہلھا علی الکفر، کہ اس زمین والوں کو برقرار رہنے دیا جائے کفر پر، کما فی سواد العراقی، جیسے کہ سواد عراق میں تھا کہ ان کے رہنے والوں کو کفر پر ہی رہنے کی اجازت دی گئی. وَمُشْرِكُ الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ، اور عرب کے جو مشرکین ہیں ان سے تو قبول نہیں کیا جائے گا، إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ، مگر صرف اسلام یا تلوار. وعمر رضی اللہ تعالی عنہ حین فتح السواد، یہاں سے دلیل ذکر فرما رہے ہیں، وہ جو متن کے اندر دوسری بات ذکر ہوئی تھی کہ سواد عراق کی ساری زمین خراجی ہے. تو کہتے ہیں وعمر رضی اللہ تعالی عنہ حین فتح السواد، اور جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سواد عراق کو فتح فرمایا، وضع الخراج علیہا، تو انہوں نے اس زمین پر خراج مقرر فرمایا، بمحضر من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں، یعنی صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر نے اس پر خراج مقرر فرمایا. ووضع علی مصر، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر پر بھی خراج مقرر فرمایا. حین افتتحها عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح فرمایا. وَقَذَا اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طرح صحابہ اکٹھے ہوئے، عَلَى وَزْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الشَّامِ، شام پر بھی خراج مقرر کرنے پر. تو ان سب میں صحابہ کا اجماع ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں اس کا فیصلہ فرمایا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، تو معلوم ہوا سب کی طرف سے اس پر اجماع ہو گیا. آگے دیکھیے، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں، وارض السواد مملوکۃ لاہلھا یجوز بیعھم لھا وتصرفھم فیھا، یہاں سے صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ سواد عراق کی ساری زمین جو ہے ان پر خراج تو مقرر کر دیا گیا، لیکن یہ زمینیں وہیں کے رہنے والے کافروں کے پاس رہنے دی گئیں، تو وہی اس کے مالک ہیں، تو وہ اس کے اندر ہر طرح کا تصرف کر سکتے ہیں، وہ اس کو بیچ سکتے ہیں، وہ اس کو ہبا کر سکتے ہیں، وہ اس کو رہن رکھوا سکتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی تصرف کرنا چاہیں اس زمین میں کر سکتے ہیں، البتہ اس زمین سے خراج وصول ہوتا رہے گا چاہے اس کا مالک کوئی بھی ہو. بھائی तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह अर्जु सवादी ममलू कतुन ली आहलिहा और सवाद इराक की जमीन जो है वह उसके रहने वालों की ममलूका है यजूजु बैउहुम लहा उनके लिए उस जमीन को बेचना जायज है वह तसर्रुफुहुम फीहा और उनके लिए उसमें तसर्रुफ करना जायज है लिअन्नल इमाम इदा फतह अर्ज़न अन वतन व कहरा अनवतन ये लफ्ज पहले भी गुजरा है भाई अनवा का माना है जोर बाजू के जरिए कुव्वत के जरिए यानी मगलूब करके कहते हैं लिअन्नल इमाम इदा फतह अर्ज़न इसलिए क्योंकि जब इमाम किसी जमीन को फतह करे अनवतन कुव्वत बाजू के जरिए व कहरन और गलबे के जरिए यह कहरन का भी वही माना है जो अनवतन का है गलबा पाते हुए उनको मगलूब करके जोरे बाजू के जरिए तो ये अतवे तफसीरी है भाई अनवतन के बाद जो वकहरन आया तो ये कहरन के जरिए उसी अनवतन का माना बयान फरमा दिया साहिब हिदाया ने कहते हैं लिअन्नल इमाम इदा फतह अर्ज़न इसलिए क्योंकि इमाम ने जब किसी जमीन को फतह फरमाया अनवतन जोरे बाजू के जरिए यानी कुव्वत के जरिए वकहरन और गलबा पाते हुए लहू अयुकिर अहलहा अलैहा तो इमाम के लिए जायज है कि वो उसके रहने वालों को उन्हीं जमीनों पर बरकरार रहने दे वयज़अ अलैहा वअला रुउसिहिमुल खराजा और ये कि इमाम मुकरर कर दे उन जमीनों पर और उन लोगों के सरों पर खराज को इमाम के लिए जायज है कि किसी जगह को फतह करे तो वो जमीनें उन्हीं कुफार के पास रहने दे और उन कुफार पर और उनकी जमीनों पर खराज मुकरर कर दे तो जमीन पर खराज आ जाएगा और काफिरों के अफराद पर खराज रस आ जाएगा यानी जिजिया आ जाएगा तो कहते हैं इमाम के लिए जायज है कि काफिरों को उनकी जमीनों पर बरकरार रखे वयज़अ अलैहा वअला रुउसिहिमुल खराजा और उनकी जमीनों पर और उनके अफराद पर खराज मुकरर कर दे फतब कल आराजी ममलूकतन ली अहलिहा तो वो जमीनें उन्हीं लोगों की ममलूक रहेंगी वकद कद्दम नाहु मिन कबलू और तहकीक ये बात हम मुकद्दम बयान कर चुके हैं ये बात हम मुकद्दम जिक्र कर चुके हैं जहां गनीमतों की तकसीम का बयान आया था तो साहिब हिदाया ने बतलाया था कि गनीमतें दो किस्म पर हैं कुछ मनकूली हैं और कुछ गैर मनकूली वहां पर यह मसला उन्होंने जिक्र फरमाया था आगे देखिए قال وكل ارض اسلم اهلها او فتحت عنوتا وقسمت بين الغانمين فهي ارض عشرين यहां से साहिब हिदाया यह बयान फरमाएंगे कि उशरी जमीन कौन सी है आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि जिस जमीन वाले लोग खुद मुसलमान हो गए और या इसी तरह इमाम ने किसी इलाके को फतह कर लिया और उनके कुफार से जमीनें छीनकर गाजियों में तकसीम कर दी तो ये लोग जो मुसलमान हो गए या ये जमीनें जो गाजियों को मिल गईं अब इनके ऊपर क्या उशर वाजिब किया जाए या खराज वाजिब किया जाए तो कहते हैं यहां पर इब्तिदा हो रही है और मुसलमान पर इब्तिदान खराज को लाजिम नहीं किया जा सकता वजह यह कि खराज में सजा वाला पहलू है और उशर में इबादत वाला पहलू है तो मुसलमान पर इब्तिदान जो है फिर उशर ही लाजिम किया जाएगा तो वो जमीनों वाले जो खुद मुसलमान हो जाएं या वो जमीनें जो गाजियों में तकसीम कर दी जाएं तो वो उशरी जमीनें हैं भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वकुल्लु अर्ज़िन अस्लमा अहलुहा और हर ऐसी जमीन के उसके रहने वाले मुसलमान हो जाएं औ फुतिहत अन वतन या ऐसी जमीन के जिसको कुव्वत बाजू से फतह कर लिया जाए वकुसिमत बैनल गानिमीना और फिर वो जमीनें गनीमत वालों के दरमियान तकसीम कर दी जाएं फहिया अर्ज़ु उशरीन तो ये उशरी जमीन है लिअन्न الحاجه الى ابتداء التوظيف على المسلمين तौजीफ भाई वज़फ युवज़िफ तौजीफ का माना है वजीफा मुकरर करना तो अब इस पर उशर का वजीफा मुकरर किया जाएगा या खराज वाला तो बतलाएंगे कि मुसलमान पर इब्तिदान वजीफा मुकरर किया जा रहा है और उशर मुसलमान के मुनासिब है लिहाजा इस पर उशर मुकरर किया जाएगा कहते हैं लिअन्न الحاجه الى ابتداء التوظيف على المسلمين इसलिए क्योंकि यहां पर हाजत है मुसलमान पर वजीफा मुकरर करने की इब्तिदा की वल उशरु अलयकुबी और उशर जो है मुसलमान के ज्यादा लायक है लिमा फीही मानल इबादती इस वजह से कि उशर के अंदर इबादत वाला माना है कि उशर सिर्फ पैदावार पर आएगा, जब तक पैदावार नहीं उशर भी नहीं। और नीस इसका मसरफ देखें तो वो जकात वाला मसरफ है, और जैसे जकात का देना इबादत है इसी तरह ये उशर भी इबादत है मसरफ की तरफ नजर करते हुए भी। भाई तो जैसे जकात फुकारा को दी जाती है और जकात इबादत है भाई, इसी तरह ये उशर जो है ये भी फुकारा ही पर खर्च किया जाता है, तो इस उशर के मसरफ से पता चलता है कि ये इबादत है भाई। ये भी किसकी तरह है? जकात की तरह है, और जकात इबादत है तो मालूम हुआ उशर भी इबादत है। ये माना है लिमा फी ही मिमानल इबादती, इस वजह से कि उशर के अंदर इबादत वाला माना है। वह कदा हुआ अखफ, और इसी तरह उशर जो है वो ज्यादा हल्का है। एक है उशर एक है खराज, उशर हल्का है क्योंकि उशर के अंदर पैदावार हासिल होगी तो फिर उस पैदावार का दसवां हिस्सा दिया जाएगा भाई, तो नौ हिस्से फिर भी उस जमीन वाले के लिए बच गए, तो इसकी अदायगी में आसानी है। जबकि खराज जो है उसके अंदर पैदावार को नहीं देखा जाएगा, बल्कि जमीन पर काश्त की कुदरत होनी चाहिए। जमीन पर काश्त की कुदरत हासिल है फिर वो शख्स कुछ काश्त करे या काश्त ना करे, हर हाल में खराज देना पड़ेगा। मालूम हुआ उशर हल्का है, वो सिर्फ पैदावार की सूरत में है, बगैर पैदावार के नहीं है भाई। कहते हैं वकदा हुआ अखफ, और इसी तरह उशर जो है वो ज्यादा हल्का है खराज के मुकाबले में। है सुयता अल्लाह कुबी नफसिल खारिजी, क्योंकि इसका ताल्लुक नफ से पैदावार से है। खारिज का क्या माना करेंगे यहां? वो चीज जो जमीन से निकलती है यानी पैदावार। कहते हैं है सुयता अल्लाह कुबी नफसिल खारिजी, क्योंकि उशर का ताल्लुक नफ से पैदावार से है। आगे देखिए वकुल्लु अर्ज़िन फुतिहत अन वतन, और हर वो जमीन जिसे कुव्वत बाजू से फतह कर लिया जाए। फ़ुक़िर अहलुहा अलैहा, फिर उस जमीन वालों को ही उस जमीन पर बरकरार रखा जाए। फ़हिय अर्ज़ु खराजिन, तो ये खराजी जमीन है। वकदा इज़ा सालहहुम, और इसी तरह जब इमाम उनसे सुलह कर ले, कुफार के साथ सुलह कर ले, तो कुफार की जमीनें हैं लिहाजा उस पर खराज ही आएगा भाई। कहते हैं वकदा इदा सालहहुम, और इसी तरह जब इमाम उन कुफार से सुलह कर ले। लिअन्न अलहाजत इलब्तिदा इत्तौज़ीफ अलल काफिरी, इसलिए क्योंकि यहां पर जो हाजत है वो काफिर पर वजीफा मुकर्रर करने की इब्तिदा है। किस चीज की हाजत है? कि काफिर पर इब्तिदाअन जो है वजीफा मुकर्रर किया जा रहा है, तो काफिर के मुनासिब खराज है क्योंकि उसमें सजा का पहलू है, तो लिहाजा इन पर खराज मुकर्रर किया जाएगा। तो कहते हैं लिअन्न अलहाजत इलब्तिदा इत्तौज़ीफ अलल काफिरी, इसलिए क्योंकि यहां पर जो हाजत है वो काफिर पर वजीफा मुकर्रर करने की इब्तिदा है। वल खराज अल यकूबी ही, और खराज उस काफिर के ज्यादा लायक है। वह मक्का तुम मखसूस तुम मिनहादा, और मक्का इसमें से मखसूस है भाई। मक्का को भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुव्वत बाजू से फतह फरमाया था, तो यह तकाजा क्या करता है कि मक्का वालों की जमीनों पर भी खराज होना चाहिए, लेकिन उन पर हुजूर ने खराज मुकर्रर नहीं फरमाया। मालूम हुआ मक्का जो है वो इस हुक्म से मखसूस है, उसका यह हुक्म नहीं है। तो कहते हैं वह मक्का तुम मखसूस तुम मिनहादा, और मक्का जो है वो इस हुक्म से मखसूस है। फइन्ना रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम फतहा अन वतन, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने मक्का को कुव्वत बाजू से फतह फरमाया। वतरका लिहा, और उसको उसके रहने वालों के लिए ही छोड़ दिया। वलम युवज़िफिल खराजा, और उन पर खराज मुकर्रर नहीं फरमाया। मक्का फतह फरमाया और उनकी जमीनें उन्हीं के पास रहने दी गई, लेकिन उन पर खराज हुजूर ने मुकर्रर नहीं फरमाया। आगे देखिए वफिल जामिई सगीर कुल्लु अर्ज़िन फुतिहत अन वतन फवसल इलैहा माउल अनहार। भाई यहां से साहिब हिदाया जामे सगीर की इबारत जिक्र फरमा रहे हैं। आपको साहिब हिदाया ने बतलाया था कि ये जो मतन है इसका नाम है बिदायतुल मुबतदी, और इस मतन को उन्होंने अखज फरमाया है कुदूरी से और जामे सगीर से। ये पीछे जो आया वकुल्लु अर्ज़िन फुतिहत अन वतन फ़ुकिर अहलुहा अलैहा फ़हिया अर्ज़ु खराजिन, ये कुदूरी की इबारत थी। लेकिन अगर कहीं पर जामे सगीर की इबारत जो है कुदूरी से जरा मुख्तलिफ हो, जामे सगीर के अंदर कोई और बात भी कोई फायदा जिक्र हो, तो साहिब हिदायत उसको भी जिक्र फरमाते हैं साथ। तो इसीलिए यहां भी वो अब जामे सगीर की इबारत जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वफील जामी सगीरी, और जामे सगीर के अंदर है कुल्लु अर्ज़िन फुतिहत अन वतन, कि हर ऐसी जमीन जिसको कुव्वत बाजू से फतह कर लिया जाए, फवसल इलैहा मा उल अनहारी, तो उन जमीनों को पहुंचा नहरों का पानी, उन जमीनों को नहरों का पानी पहुंचा, फहिया अर्जु खराजिन, तो वो खराजी जमीन है, वमा लम यसिल इलैहा मा उल अनहारी, और वो जमीनें जिनको नहरों का पानी नहीं पहुंचा, वस्तुखरिजा मिनहा आइनुन, और उसमें से चश्मा निकाल लिया गया, उन जमीनों में कोई पानी का चश्मा निकाल लिया गया, फहिया अर्जु उशरीन, तो ये उशरी जमीन है। भाई पीछे कुदूरी के अंदर मतन के अंदर यह बात जिक्र हुई थी कि अगर किसी जमीन वाले लोग खुद ही मुसलमान हो जाएं, या मुसलमान किसी इलाके को कुव्वत बाजू से फतह करें और उन जमीनों को इमाम गाजियों में ही तकसीम कर दे, तो वो उशरी जमीन है। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं कि इनके अंदर पानी को देखा जाएगा, जिस पानी के साथ उन जमीनों को सैराब किया जाता है, इसलिए क्योंकि जमीन से जो पैदावार हासिल होती है वो पानी के जरिए हासिल होती है। लिहाजा आगे चलकर मतन में और भी तफसील आ जाएगी इस मसले की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर मुसलमान की जमीन है और उसको वो कुएं के जरिए सैराब करता है जो उसने खोदा है, कि उसने कुआं खोदा है और उसके जरिए जमीन सैराब करता है, या कोई इसने चश्मा निकाला है और उसके जरिए जमीन को सैराब करता है, या किसी बड़े दरिया के पानी के जरिए उस जमीन को सैराब करता है, तो फिर इस सूरत में तो यह उशरी जमीन ही है जी। मालिक भी कौन? मुसलमान। और इसको सैराब भी चश्मे या कुएं के पानी से या आम दरिया के पानी से इसको सैराब करता है, यानी ऐसा दरिया जिसका मालिक कोई नहीं है। लेकिन अगर वो मुसलमान इस जमीन को आजमी बादशाहों की खुदवाई हुई किसी नहर से सैराब करता है, आजमी बादशाहों की, आजमी बादशाहों की खुदवाई हुई किसी नहर के पानी से सैराब करता है, तो फिर इस सूरत के अंदर इस जमीन पर उशर नहीं आएगा बल्कि खराज आएगा, क्योंकि एतबार पानी का है। जमीन पैदावार देती है किसके जरिए? पानी के जरिए, तो पानी का एतबार किया जाएगा। तो अगर आम पानी बारिश का पानी है या कुएं या चश्मे का पानी या आम दरिया का पानी है, तो फिर इस सूरत में तो यह उशरी जमीन ही है। लेकिन अगर किसी ऐसी नहर से जमीन को सैराब किया जो अजमी बादशाहों की ममलूका नहरें थीं, उन्होंने खुदवाई थीं, तो फिर इस सूरत के अंदर इस जमीन पर भी खराज ही आएगा, अगरचे मुसलमान ही इसका मालिक क्यों ना हो। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वफिल जामी सगीरी, और जामे सगीर के अंदर है कुल्लु अर्ज़िन फुतिहत अन वतन, के हर वो जमीन जिसे कुव्वत बाजू से फतह कर लिया जाए, फवसल इलैहा मा उल अनहारी, उस जमीन को पहुंच गया नहरों का पानी। यहां मुतलक नहरें जिक्र हैं, लेकिन आगे चंद सत्रों के बाद मतन में जिक्र करेंगे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ऐसी नहर के पानी से जमीन को सैराब करना जो अजमी बादशाहों की ममलूका हैं, उन्होंने खुदवाई हैं, तो इन जमीनों पर खराज आएगा। तो यहां ये जो अनहार आया, इससे आम नहरें या दरिया मुराद नहीं। याद रखो अरबी जुबान में दरिया को भी नहर कहते हैं। तो कहते हैं फवसल इलैहा मा उल अनहारी, तो उन जमीनों को अजमी बादशाहों की ममलूका नहरों का पानी पहुंच गया, यानी उसके जरिए उसको सैराब किया जाता है, फहिया अर्जु खराजिन, तो ये खराजी जमीन है, वमा लम यसिल इलैहा मा उल अनहारी, और जिन जमीनों को अजमी बादशाहों की ममलूका नहरों का पानी नहीं पहुंचा, यानी उसके जरिए सैराब नहीं करते, वस्तुखरिजा मिनहा आइनुन, और उस जमीन में चश्मा निकाल लिया गया यानी उसके जरिए सैराब करते हैं, ये इसी तरह आगे बतलाएंगे बारिश के पानी से सैराब करते हैं, या कुआं खोद लिया उसके जरिए सैराब करते हैं, या ऐसे दरिया का पानी है जो किसी का ममलूक नहीं है, कुदरती तौर पर है वो दरिया, तो फिर इस सूरत में यह उशरी जमीन ही है जबकि इसका मालिक मुसलमान है भाई। तो कहते हैं वमा लम यसिल इलैहा मा उल अनहारी, और जिन तक इन ममलूका नहरों का पानी नहीं पहुंचा, वस्तुखरिज मिनहा आइनुन, और उस जमीन में से चश्मा निकाल लिया गया, फहिया अर्ज़ु उशरीन, तो यह उशरी जमीन है, लिअन्नल उशरा यतअल्लकु बिल अर्ज़ि नामियति, इसलिए क्योंकि उशर का ताल्लुक नामी जमीन से होता है, नामी नमा से है बढ़ने, जिसमें बढ़ोतरी हो अफजाइश हो यानी पैदावार देने वाली जमीन, अर्ज़े नामी किसे कहेंगे, पैदावार देने वाली जमीन भाई। कहते हैं लिअन्नल उशर यतअल्लकु बिल अर्ज़ि नामियति, इसलिए क्योंकि उशर का ताल्लुक पैदावार देने वाली जमीन से होता है, व नमाउहा बिमाइहा, और जमीन की जो अफजाइश होती है, जमीन के अंदर जो बढ़ोतरी होती है यानी उसकी जो पैदावार है, तो कहते हैं वनमा उहा बिमा इहा, और जमीन की जो पैदावार है वो उसके पानी के जरिए होती है, फयु अतबरु सकयु बिमा इल उशरी औ बिमा इल खराजी, तो लिहाजा एतबार किया जाएगा इसके सैराब करने का उशरी पानी से या खराजी पानी से। जमीन किसकी है, मुसलमान की भाई, काफिर की जमीन है फिर तो उसमें आना ही खराज है, मुसलमान की जमीन की बात हो रही है, मुसलमान की जमीन है तो वह अगर इसको उशरी पानी से सैराब करता है तो उशर ही आएगा, लेकिन अगर वह खराजी पानी के जरिए इसको सैराब करेगा तो फिर मुसलमान की जमीन होने के बावजूद इस पर खराज आएगा भाई, क्योंकि एतबार पानी का है। यह मजहब है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का, आगे इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का मजहब भी जिक्र होने लगा है भाई। कहते फयुअतबरु सक्यु बिमा इल उशरी औ बिमा इल खराजी, तो उशरी या खराजी पानी के जरिए सैराब करने का एतबार किया जाएगा। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमन अहया अर्जम मवातन, और जिसने बेआबाद जमीन को आबाद किया, अर्ज मवात भाई, अर्ज मवात कहते हैं बेआबाद जमीन, बेआबाद जमीन यानी जिस पर काश्तकारी वगैरह नहीं होती, वैसे ही एक जमीन पड़ी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, अर्ज मवात, ये मौत से है यानी ये मुर्दा जमीन है, इससे कोई फसल वगैरह हासिल नहीं होती, और इसी जमीन को आबाद करना इसको कहते हैं इहया, इहया ए अर्ज मवात, बेआबाद जमीन को जिंदा करना यानी उसको आबाद करना, उसको काश्त के काबिल बनाना। याद रखो ये जो जमीनें हैं जिन पर आप देखते हैं लोग फसलें काश्त कर रहे हैं, ये इब्तिदा में ऐसी नहीं थी, ये लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं और फिर ये काश्त के लिए आहिस्ता आहिस्ता जमीन तैयार होती चली जाती है, सख्त जमीन होती है, उसके अंदर पत्थर वगैरह और चीजें होती हैं और फिर काश्तकार उस पर मेहनत करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जमीन बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तो ये जितनी जमीनें आप देखते हैं जिन पर काश्तकारी होती है, इनको बेइंतहा मेहनत के बाद इस हालत तक पहुंचाया गया है, बात समझ में आ गई। तो बहरहाल एक दफा जब जमीन तैयार हो गई और आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो सिलसिला चलता रहेगा। तो अब सूरत ये है कि ममलिकत इस्लामिया के अंदर बेआबाद जमीनें बाज पड़ी हुई हैं, तो याद रखो जो इनको आबाद करेगा वो इनका मालिक बनेगा, लेकिन इंदल अहनाफ एक शर्त और भी जरूरी है कि बादशाह की इजाजत से जमीन को आबाद करे। भाई एक बेआबाद वीरान जमीन पड़ी हुई है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, और एक शख्स उसको आबाद करता है तो इंदल अहनाफ मालिक नहीं बनेगा जब तक इमाम की इजाजत ना हो। वजह यह कि अगर बगैर इजाजत के जो भी जमीन को आबाद करे और उसका मालिक बनता चला जाए तो फिर तो ममलिकत के कामों के लिए जगह तंग पड़ जाएंगी भाई, जिसका जहां जी चाहेगा जमीन पर कब्जा करके उसको आबाद करना शुरू कर देगा। तो इंदल अहनाफ इमाम की इजाजत से कोई बेआबाद जमीन को मेहनत करके आबाद कर लेता है यानी उसे काश्त के काबिल बना लेता है तो वो उसका मालिक बन जाएगा। मसलन इमाम ने एक आदमी को जमीन दे दी कि ये सारी जमीन जो है अगर तुमने इसको काबिल काश्त बना दिया तो ये तुम्हारी हो गई, तुम इसके मालिक हो गए, तो वो अगर उसको आबाद कर लेता है तो वो मालिक बन जाएगा, और अगर वो आबाद नहीं करता तो इमाम उससे लेकर किसी और को दे देगा कि वो आबाद करे भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह मन अहिया अर्जम मवातन, और जिसने बे आबाद जमीन को आबाद किया फही आइंदा अभी यूसुफ रहिमहुल्लाहु ताला मोतबरा तुम भी हय्यिज़िहा। हय्यिज़ का माना है जगह जगह। तो इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं कि यह जमीन जो है मोतबरा तुम भी हय्यिज़िहा, इसका एतबार किया जाएगा इसकी जगह के लिहाज से। इस जमीन का एतबार किया जाएगा जगह के लिहाज से, यानी इसके आसपास की जमीनों को देखा जाएगा। तवज्जो है, मसला क्या चल रहा है? एक शख्स ने एक बेआबाद जमीन को आबाद किया है, तो अब इस जमीन पर खराज आएगा या उशर आएगा? आबाद करने वाला मुसलमान है, अगर जिम्मी आबाद कर रहा है फिर तो जाहिर सी बात है खराज ही आएगा। बात चल रही है मुसलमान एक बेआबाद जमीन को आबाद करता है, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पानी का एतबार नहीं करेंगे बल्कि आसपास की जमीनों को देखेंगे। अगर इस जमीन के आसपास जो जमीनें हैं वो खराजी हैं तो यह जमीन भी खराजी करार दी जाएगी जिसको मुसलमान ने आबाद किया है, और इस पर खराज मुकर्रर किया जाएगा। और अगर आसपास की जमीनें उशरी हैं तो फिर इस जमीन को भी उशरी करार दिया जाएगा। तो कहते हैं वो जिसने बेआबाद जमीन को आबाद किया फही आइंदा अभी यूसुफ रहिमहुल्लाहु ताला मोतबरा तुम भी हय्यिज़िहा, तो ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक इसका एतबार किया जाएगा इसकी जगह के लिहाज से। फइन कानत मिन हय्यिज़ अर्ज़िल खराजी, अगर ये जमीन जो है खराजी जमीन के हय्यिज़ में हुई, खराजी जमीन के हय्यिज़ यानी खराजी जमीन की जगह में हुई। कहते हैं फइन कानत मिन हय्यिज़ अर्ज़िल खराजी, अगर ये जमीन जो है ये खराजी जमीन की जगह में हुई व मानाहु बिकुर्बी ही, यहां से साहिब हिदायत हय्यिज़ का माना बयान फरमा रहे हैं कि खराजी जमीन की जगह में हुई यानी उसके करीब हुई। ये जमीन जो आबाद की है ये खराजी जमीन के करीब हुई तो इसको खराजी करार देंगे, और अगर ये उशरी जमीन के करीब हुई तो उसको उशरी जमीन करार देंगे। तो कहते हैं वह माना हु बिकुर्बी ही, कहते हैं साहिब कुदूरी के कौल का माना यह है कि वो खराजी जमीन के करीब हुई। फही खराजी यतुन, तो ये नई जमीन जिसको आबाद किया गया है ये भी खराजी होगी। वह इन कानत मिन हय्यिज़ अर्ज़िल उशरी, और अगर ये उशरी जमीन की जगह में हुई यानी उसके करीब हुई फही उशरी यतुन, तो ये उशरी जमीन होगी। वल बसरा तो इंदहु कुल्लुहा उशरी यतुन भी इजमा सहाबत रजी अल्लाह ताला अन्हुम। वल बसरा तो, और बसरा जो है इंदहू इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक कुल्लुहा उशरियतुन, वो सारा का सारा उशरी है भी इजमा सहाबत रजी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के इजमा की वजह से। इजमा की वजह से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कियास तो यह तकाजा करता है कि बसरा की जमीनों को खराजी करार देना चाहिए क्योंकि उसके करीब वाली जमीनें सारी खराजी हैं, और जिस जमीन के करीब हो उसी का एतबार किया जाता है, तो बसरा की जमीनों को भी खराजी करार देना चाहिए। लेकिन सहाबा ने इसके ऊपर उशर मुकर्रर फरमाया, सहाबा ने उशर, तो सहाबा के इजमा की वजह से यहां कियास को तर्क कर दिया गया। तो कहते हैं वल बसरा तो इंदहु कुल्लुहा उशरियतुन, और बसरा जो है वो सारा का सारा उशरी है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी इजमा सहाबत रजी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के इजमा की वजह से। लिअन्न हय्यिज़ शैई युअता लहू हुक्मुहु कफना इद्दार युअता लहू हुक्मुद्दार, यहां से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं कि करीब वाली जमीनों का एतबार किया जाएगा, वजह यह कि जो चीज किसी के करीब होती है उसके लिए उसी चीज वाला हुक्म हो जाता है। करीब इला शय फी हुक्म शय होती है, जो जिस चीज के करीब हो उसका वही हुक्म होता है। कहते हैं लिअन्ना हय्यिज़ शैई, इसलिए क्योंकि किसी चीज के जगह मुराद है करीब होना। कहते हैं लिअन्ना हय्यिज़ शैई, इसलिए क्योंकि किसी चीज का जो हय्यिज़ होता है यानी किसी चीज के जो करीब होता है, युअता लहू हुक्मुहु, उसको उसी का हुक्म दे दिया जाता है। कफना इद्दारी, जैसे कि घर का सहन है, युअता लहू हुक्मुद्दारी, उसको घर का हुक्म दे दिया जाता है। भाई फना उद्दार, घर का सहन, मुराद वो सहन नहीं है जो घर के अंदर दाखिल होता है, जो ममलूक होता है, नहीं, मुराद है घर के करीब जो खुली जगह है, घर के करीब जो बाहर खुली जगह है, जो उस शख्स की, उस घर वाले की ममलूका नहीं है, उस खुली जगह का हुक्म भी इस घर की तरह ही है, यानी इस घर वाले के लिए उस जमीन से नफा उठाना जायज है, यानी उस घर वाले के लिए उस जमीन से नफा उठाना जायज है, क्योंकि ये जो बाहर की जमीन है ये इसके घर के करीब है। तो मालूम हुआ किसी चीज के जो करीब शय होती है उसका वही हुक्म होता है जो उस शय का होता है। भाई ये माना है लिअन्ना हय्यिज़ा शयई, इसलिए क्योंकि किसी चीज के जो करीब हो, युअता लहू हुक्मुहु, उसको उसी चीज का हुक्म दे दिया जाता है। कफना इद्दारी, जैसे कि घर का सहन है, युअता लहू हुक्मुद्दारी, उसको घर का हुक्म दे दिया जाता है। हत्ता यजूज़ु लिसाहिबिहा लिंतिफाउ बिही, यहां तक के घर वाले के लिए इससे नफा उठाना जायज होता है। वकदा ला यजूज़ु अख्ज़ु मा क़रुबा मिनल आमिरी, और इसी तरह जायज नहीं है लेना उसको जो आबादी के करीब हो। भाई याद रखो, बेआबाद जमीन को जो आबाद करेगा इमाम की इजाजत से वो उसका मालिक बन जाएगा, लेकिन देहात के करीब, बस्ती के करीब की जमीनें उनको आबाद करके उनका मालिक नहीं बना जा सकता। वजह यह कि देहात के साथ मिली हुई जो जमीनें हैं वो देहात वालों के अपने काम आती हैं। देखो घरों के बाहर जो खुली जगह होती है देहात में आसपास, देहात वाले लोग कभी वहां जाकर बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं, उनके बच्चे वहां चले जाते हैं, वो खेलते हैं, इसी तरह वो फसलें कभी काट कर ले आते हैं, वहां लाकर उन फसलों को जमा करते हैं। तो देहात के घरों के साथ जो जमीनें होती हैं वो देहात वालों के फायदे के लिए होती हैं, लिहाजा उनको आबाद करना और उनका मालिक बनना जायज नहीं है। भाई इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं जो जिस चीज के करीब हो उसके लिए उसी चीज वाला हुक्म हो जाता है। तो यहां भी देखो देहात के करीब की जमीनें जो हैं वो देहात ही के हुक्म में हैं, उन पर कब्जा करके मालिक नहीं बना जा सकता। ये माना है वकजा ला यजूज़ु अख्ज़ु मा क़रुबा मिनल आमिरी, और इसी तरह जायज नहीं है उस जमीन को लेना जो आबादी के करीब हो। आमिर का माना आबादी, तो यहां आया वकजा ला यजूज़ु, और इसी तरह जायज नहीं है अख्ज़ु मा क़रुबा मिनल आमिरी, उस जमीन को जो आबादी के करीब है। जबकि हिदायत के बाद नुस्खों में यहां अख्ज़ की जगह इह्या का लफ्ज आया है और वो लफ्ज ज्यादा मुनासिब है। वकजा ला यजूज़ु इह्या मा क़रुबा मिनल आमिरी, और इसी तरह आबाद करना उन जमीनों को जो आबादी के करीब है वो जायज नहीं है। भाई आगे देखिए वकान अल कियास फिल बसरती, और बसरा के अंदर तो कियास ये था कि अंतकून खराजी यतन, के बसरा की जमीन खराजी होनी चाहिए। लिअन्नहा मिन हय्यिज़ी अर्ज़िल खराजी, इसलिए क्योंकि बसरा जो है वो खराजी जमीन के हय्यिज़ में है, यानी उसके करीब है। इल्ला अन्न सहाबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वज़फू अलैहा अल-उश्रा, मगर यह के सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने वज़फू अलैहा अल-उश्रा, उन्होंने बसरा पर उश्र का वजीफा मुकर्रर किया। फतुरिकल कियासु लिइजमाइहिम, लिहाजा कियास को छोड़ दिया गया सहाबा के इजमा की वजह से। फतुरिकल कियासु लिइजमाइहिम, और आप चाहें तो इसको आप फेले मारूफ भी पढ़ सकते हैं, फतरा कल कियासा, तो इमाम अबू यूसुफ रमला ने कियास को तर्क फरमा दिया लिइजमाइहिम, सहाबा के इजमा की वजह से। आगे देखिए वकाला मुहम्मदुन रहिमहुल्लाह, भाई यहां तक बात चल रही थी, इमाम अबू यूसुफ रमला का मजहब जिक्र हुआ, उनके नजदीक किसी मुसलमान की आबाद की हुई जमीन को खराजी करार देंगे या उश्री, वो उसके आसपास की जमीनों को देखकर उस पर हुक्म लगाया जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के बारे में कुछ तफसील मैंने पहले जिक्र कर दी थी, उनके नजदीक एतबार उस पानी का है जिसके जरिए जमीन को सैराब किया जा रहा है। अगर उशरी पानी से जमीन को सैराब किया तो यह उशरी जमीन है, यानी बारिश का पानी है या कुओं का पानी है या चश्मों का पानी है या ऐसे दरिया जो किसी के ममलूक नहीं, तो इस सूरत में यह उशरी जमीन है। और अगर खराजी पानी के जरिए इस जमीन को सैराब किया, यानी उन नहरों के पानी से जो अजमी बादशाहों ने खुदवाई थी और जो उनकी ममलूका हैं, तो फिर यह जमीन खराजी होगी। और याद रखो, उलमा फरमाते हैं कि फतवा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल पर है, फतवा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल पर है। कहते हैं वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं इन अहयाहा बिबिरिन हफराहा, अगर इस मुसलमान ने उस जमीन को आबाद किया बिबिरिन ऐसे कुएं के जरिए हफराहा जो इसने खुद खोदा है, औ बिआइनिन इस्तखरजहा या ऐसे चश्मे के जरिए सैराब किया जो इसने खुद निकाला है, औ माइदिजलता वल फुराती या इस जमीन को उसने दिजला या फुरात के पानी से सैराब किया। दिजला और फुरात ये दरिया हैं भाई, इराक के दो मशहूर दरिया हैं भाई, या उसने उसको दरियाए दिजला या दरियाए फुरात के पानी से सैराब किया। वल अनहार इल इजामी आई व मा इल अनहार इल इजामी, या इस जमीन को उस मुसलमान ने उन बड़ी नहरों के जरिए सैराब किया, बड़ी नहरें यानी दरिया, उन बड़ी नहरों के जरिए सैराब किया। अल्लती ला यमलिकुहा अहदुन, कि जिनका मालिक कोई नहीं है, फहिया उशरियतुन, तो ये उशरी जमीन है। वकदा इन अहयाहा बिमा इस समाई, और इसी तरह ये जमीन उशरी होगी अगर इसको आसमान के पानी यानी बारिश के पानी के जरिए इसको आबाद किया। व इन अहयाहा बिमा इल अनहार, और अगर उसने इस जमीन को आबाद किया बिमा इल अनहार उन नहरों के पानी के जरिए, अल्लतिहता फरहल आजिमू जिनको अजमियों ने खोदा है यानी अजमी बादशाहों ने खुदवाया है, और अगर इसने जमीन को आबाद किया बिमा इल अनहार इल्लतिहता फरहल आजिमू उन नहरों के जरिए जिनको अजमियों ने खोदा है, मिसलो नहरिल मलिकी जैसे कि नहरे मलिक है, व नहरी यजदा जर्द और जैसे नहरे यजदा जर्द है, ये पुराने बादशाहों ने कोई नहरें खुदवाई थी तो ये ममलूका नहरें थी, लिहाजा इनसे जमीन को सैराब करेगा तो वो खराजी जमीन होगी। कहते हैं मिसलु नहरिल मलिकी जैसे कि नहरे मलिक है, व नहरी यजदा जर्द और जैसे नहरे यजदा जर्द है, फहिया खराजियतुन तो यह जमीन खराजी है, अगरचे मुसलमान ने आबाद किया है लेकिन पानी तो खराजी है, लिहाजा जमीन भी खराजी होगी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। लिमा जकरना मिन एतबार इल माई, वो जो हमने जिक्र कर दिया यानी पानी का मोतबर होना, इस हुआ सबब उलिन नमाई, इसलिए क्योंकि पानी ही अफजाइश का यानी बढ़ोतरी का सबब है। नमा का क्या माना, अफजाइश और बढ़ोतरी यानी पैदावार मुराद है। इस हुआ सबब उलिन नमाई, इसलिए क्योंकि पानी ही पैदावार का सबब है। वली अन्नहु ला युमकिनु तौज़ीफुल खराज इब्तिदा अन अलल मुस्लिम कुरहन, वली अन्नहु ला युमकिनु और इसलिए क्योंकि मुमकिन नहीं है तौज़ीफुल खराज के खराज को मुकरर किया जाए इब्तिदा अन अलल मुस्लिम, इब्तिदा से ही मुसलमान पर कुरहन यानी जबरन, मुसलमान पर इब्तिदा से ही जबरन जबरन खराज मुकरर कर दिया जाए यह मुमकिन नहीं है, मुसलमान पर उशर लाजिम किया जाएगा। लेकिन अगर उसने खुद कोई ऐसा काम कर लिया, मसलन उसने खराजी पानी से जमीन को सैराब किया है, तो फिर इस वजह से खराज मुकरर किया जाएगा। तो कहते हैं वली अन्नहु ला युमकिनु तौज़ीफुल खराज इब्तिदा अन अलल मुस्लिम कुरहन, कहते हैं इसलिए क्योंकि मुमकिन नहीं है कि इब्तिदा से ही खराज का वजीफा मुसलमान पर जबरन मुकरर कर दिया जाए। फयुअता बरुफीदा लिकल माऊ, तो इसके अंदर पानी का एतबार किया जाएगा। लिअन्न सक़्या बिमा इल खराजी दलालतुन इल्तिज़ामियतुन, इसलिए क्योंकि खराजी पानी से सैराब करना दलालतुल इल्तिजामियतुन, ये दलालत इल्तिजामी है, ये दलालत इल्तिजामी है, यानी मुसलमान खुद अपने ऊपर खराज का इल्तिजाम कर रहा है, अपने ऊपर खुद खराज को लाजिम कर रहा है अपने फेल के जरिए, ये माना है। कहते हैं लिअन्न सक़्या बिमा इल खराजी, इसलिए क्योंकि खराजी पानी से सैराब करना दलालतुल इल्तिजामियतुन, ये दलालत इल्तिजामी है कि वो खराज को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। भाई बात समझ में आ गई भाई, चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।